ओम शांति। सदा एक्र स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले ही तपस्वी है। सभी अपने को तपस्वी आत्मा ये अनुभव करते हो। तपस्वी अर्थात सदा अपने तपस्या में रहने वाले। तो तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा तपस्वी हो या दूसरा तीसरा भी कोई है। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, कोई ना कोई आसन पर तपस्या करते हैं। तो आपका आसन कौन सा है? स्थिति आपका आसन है। जैसा एक्र स्थिति यह आसन हो गया, फरिश्ता स्थिति यह आसन हो गया, तो आसन पर स्थित होते हैं ना, बैठते हैं अर्थात स्थित हो जाते हैं। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते हो, टिक जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन इन श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। मन बुद्धि द्वारा इन स्थितियों में स्थित हो जाते हो अर्थात बैठ जाते हो, ऐसा तपस्वी हो तो अच्छा आसन मिल है ना, सॉरी अच्छा आसन मिला है ना, यहाँ है आसन, फिर भविष्य में मिलेगा सिंहासन। तो जितना जो आसन पर स्थित रहता वो उतना ही सिंहासन पर भी स्थित रह सकता है। जितना समय चाहो जब चाहो तब आसन रूपी स्थिति में स्थित होते हो ना, होते हो या हलचल में होते हो। क्या होता है, जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसा मन हलचल तो नहीं करता, अचल है या हलचल भी है? सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी हलचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो सदा का राज्यभाग्य लेना है या कभी कभी का, और स्थित सदा होना है या कभी कभी। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार कर लेती है तो सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल या स्वस्थिति पावरफुल, तो इस स्थिति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। आप तपस्वी आत्माओं की स्थिति का यादगार आजकल के तपस्वियों ने कॉपी की है, लेकिन उल्टी की है। आप तपस्वी एक्र स्थिति में एकाग्र होते हो और आजकल के क्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एक्र स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। आपका कितना सहज है और उन्हों का कितना मुश्किल है, तो सहज योगी हो ना। एक को याद करना सहज है व अनेकों को याद करना सहज है। तो द्वापर से क्या किया, अनेकों को याद किया, और अभी क्या करते हो, एक को याद करते हो ना। एक को याद करना सहज है या मुश्किल है? माया आती है, आएगी तो अंत तक, लेकिन आएगी अंत तक, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। माया आए तभी तो माया जीत बनेंगे ना। तो माया का आना बुरा बात नहीं है, माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार का ना कमजोरी है। तो माया जीत होना, सदा ये याद रखो कि अनेक बार के विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, सदा एकर स्थिति का आसन आधार है स्थिति, स्थिति के आधार है स्मृति। मुझे थोड़ा हिंदी का ग्रामर मिस्टेक्स होता है,
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए।
स्थिति के आधार है स्मृति, जितना स्मृति अच्छा रहेगा उतना हमारा स्मृति बहुत बहुत अच्छा रहेगा। पहले हम स्मृति के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और स्मृति माना
संकल्प,
जो जो संकल्प आता रहता है वही स्मृति बन जाता है। बाबा ने एक बार कहा था, स्मृति में सदा समर्थ रहो, जितना हम समर्थ संकल्प करेंगे उतना हम पॉजिटिव संकल्प करेंगे, उतना शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प करेंगे उतना हमारा स्थिति अच्छा बनेगी। आपको एक अमृत मूल्य में भी पॉइंट आया, स्थिति में समर्थता, दृष्टि में दिव्यता, वृत्ति में विल पावर, स्थिति में फरिश्ता स्थिति, अवस्था में निराकारी अवस्था, और संगठन में एक बल, और योग में संतुष्टता। इस सभी का आधार है स्मृति। जितना हम स्मृति, जो जो स्मृतियां आते रहते हैं बस उसको ऑब्जर्व करते रहना है। हम जितना अपना स्मृति को अच्छा रखेंगे स्थिति और अच्छा बन जाती रहती। और स्थिति माना अपना आसन को बराबर नहीं हिलना चाहिए तो स्थिति अच्छा रहेगी। आसन क्या है बाबा? यहाँ दो स्थिति बताया है, हाँ, एकर स्थिति और फरिश्ता स्थिति। एकर स्थिति, फरिश्ता स्थिति, ये भी एक डिग्री कॉलेज जैसा। फरिश्ता स्थिति, बिंद रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, ये सब कॉलेज की पढ़ाई है। और रिसर्च माना ज्ञान का मनन चिंतन, ये सब हाईस्कूल पढ़ाई है। लेकिन ज्वालामुखी स्थिति माना रिसर्च है। बस एक लवलीन स्थिति, ज्वालामुखी स्थिति माना जितना हम मगन हो जाएंगे उतना शक्तिशाली बनाएंगे, वो अपने आप वाइब्रेशंस फैलता रहता है। राजू भाई हर बार सुनाते रहते हैं, वाइब्रेशंस फैलाने की संकल्प भी नहीं जरूरत नहीं है, वो हम ज्वालामुखी स्थिति में रहेंगे वो वाइब्रेशंस अपने आप विश्व में फैल जाता है। मेन इम्पोर्टेंट है हमारा योग बल और बीज रूप स्थिति, बिंद रूप स्थिति, जितना हो सके उतना ज्वालामुखी स्थिति में, जितना हो सके उतना समय में बैठ जाना चाहिए। अभी जगदीश भाई ने एक बार कहा था, वो ये नागेश भाई ने मुझे बताया एक बार, जगदीश भाई और निर्मल शांत दादी आंगन में चिटचट कर रहे रात को भोजन के बाद 8:30 बजे, सभी लोग हम जाके सुनते थे। तो दादी ने दो तीन दिन देखा तो प्रकाश मणि दादी आके उनको बताया, आप लोग जो चिटचट कर रहे मेडिटेशन हॉल में जाके तेजी से। तो 15 दिन ऐसा चली थी जगदीश भाई का, निर्मल शांता दादी का, उसमें बहुत बहुत पॉइंट्स निकले, यज्ञ की हिस्ट्री और स्थिति के ऊपर और स्मृति के ऊपर और तपस्या क्या है, ये 2000 में चली ये बात। इतना और तपस्या साल में 91-92 में बहुत क्लासेस तपस्या के ऊपर चली। तपस्या माना एक स्थिति, तपस्या माना कर्मेंद्रिया जीत, तपस्या माना जितना हम जो स्थिति में रहते हैं जो करना चाहते हैं वो करके दिखाना, माना प्रयोग करना। तपस्या माना मेन इम्पोर्टेंट प्रयोग में लाना, और तपस्या माना कर्मेंद्रिया जीत, तपस्या माना माया जीत। माया जीत का आधार है निद्रा जीत, कर्मेंद्रिया जीत, प्रकृति जीत, मन जीत, तो माया जीत बन जाएंगे, जगत जीत बन जाएंगे। और आसन माना आसन का आधार मेन, और 4 नियम है हमारा, मर्यादा है, जगदीश भाई ने क्लास कराई, जो हमारा नियम है पवित्रता, सात्विक आहार, दिव्य गुण धारणा, सत्संग। ये 4 नियमों में हम जितना परफेक्ट रहेंगे हमारा आसन एक स्थिति का आसन वो परफेक्ट रहेगी। नियमों में थोड़ा सा इधर उधर होगा, हम हिल जाएंगे, मन बुद्धि हिल जाएगी। और मन बुद्धि को एकाग्र करना, मन बुद्धि को एकाग्र करना माना मन संकल्प करती, जो मन संकल्प करती बुद्धि, जो संकल्प किया मन वो बुद्धि देखना है। जो बुद्धि नहीं देखी, ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, मन बुद्धि। बुद्धि नहीं देखी, मन बुद्धि को खींच के ले जाती, और मन संकल्प नहीं करती, बुद्धि कुछ ना कुछ देख के मन को ले जाती। इसलिए तपस्या में मेन इम्पोर्टेंट बात ये मन बुद्धि को एक करना। जो मन संकल्प करती बुद्धि वही देखना है और कुछ नहीं देखना है, तो ही हम ज्यादा समय इस तपस्या में रह जाए, अपना कुछ अच्छा स्थिति पाएंगे। और तपस्या माना व्यक्त मूल्य का क्लास जगदीश भाई ने रिपीट किया था तपस्या साल में 91-92 पूरा साल कितना क्लासेस तपस्या के ऊपर। तपस्या माना एकाग्रता, एक बल, एक भरोसा, एक रस, एक मत, एकता, एकांत प्री, एक नामी, एकानमी। ये नौ बातों के ऊपर भाई जी ने बहुत बहुत अच्छा क्लासेस कराते थे। वो इस गर्मी दिनों में शांति स्तंभ में डेली क्लासेस होता था। सूरज भाई ने दिव्य गुणों के एक एक दिव्य गुण के ऊपर क्लास कराया था। बाद में जगदीश भाई भी 3 दिन क्लास कराए थे इस तपस्या के ऊपर। तपस्या माना लवलीन स्थिति, मगन स्थिति, पूरा बेहद वैरागी। इस आसन का आधार है ये 4 नियम। ये 4 नियम जितना पक्का होगा, तो ये 4 जो सब्जेक्ट्स है ज्ञान योग धारणा सेवा पूरा पक्का हो जाएंगे। ज्ञान, ये सचिन भाई जैसा कितना मनन चिंतन करे, लिख के पढ़े, सुनाते रहे, जो भी करे, कितना मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सचमुच हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का आधार ही है ये ज्ञान, ज्ञान का बल। और योग, हम जितना योग में बैठेंगे एक रस पावरफुल, इतना पावरफुल उठने के दिल नहीं लगना चाहिए, और शरीर को भूल जाना चाहिए। शरीर स्थिति, विदेही स्थिति, अव्यक्त स्थिति, एक रस स्थिति, उस स्थिति में हम रह जाएंगे। स्थिति में रह जाएंगे तो हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। और धारणा, इम्पोर्टेंट धारणा, एक ज्ञान योग दिखता नहीं है, लेकिन धारणा दिखेगा। जितना हमारे अंदर ज्ञान योग है, तो कैसे मालूम होगा मैं बहुत ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। जो हमारा धारणा से ही ये ज्ञान योग कितना है मालूम हो जाएगा। धारणा माना आचरण, प्रैक्टिकल लाइफ, हमारा जीवन। गुलजार दादी हर बार सुनाते ना, मेन सेवा क्या है, आपका फेस और आपका दृष्टि, मस्तक, आपके मस्तक से, आपका फेस से, आपका आचरण कर्मों से आप सेवा कर सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेवा यही है धारणा माना। जितना हम धारणा में बहुत ज्यादा मार्क्स लेंगे, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे इस ज्ञान योग को, उतना हम दिव्य गुणधारी बन जाएंगे। सतीत, सतीत का गुणों का आधार ये 4 सब्जेक्ट्स, ये 4 सब्जेक्ट्स का आधार 4 नियम। एकर स्थिति का आधार, एकर स्थिति का आसन का आधार यही है। और सेवा, फर्स्ट मेन सेवा है स्व को बाप समान परिवर्तन करना। स्व सेवा मेन इम्पोर्टेंट, स्व की परिवर्तन, संस्कारों की परिवर्तन, बातों की परिवर्तन, कर्मों की परिवर्तन, व्यवहारों की परिवर्तन। मेन इम्पोर्टेंट सेवा माना स्व को बदलना है, बाद में सेवा की पार्ट। और सेवा माना जितना हो सके उतना परमात्मा संदेश हरेक को देना है। और सेवा माना हरेक को आत्मिक दृष्टि से देखना है, आत्मिक वृत्ति से, आत्मिक कृति से, आत्मिक व्यवहार में रहना है, वही मेन इम्पोर्टेंट सेवा है। स्वयं सेवा, फर्स्ट स्व सेवा को इम्पोर्टेंट देना है, स्व को बदलना है, स्व को परिवर्तन करना है, तो ही हम विश्व सेवा में आगे बढ़ जाएंगे। विश्व सेवा माना जानते हैं, जो भी है, मनसा वाचा करना, समय, स्वास, संकल्प, मन, बुद्धि, सभी से सेवा, इस सेवा से मन हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। कितना हम फीलिंग प्रूफ बने ये सेवा से मालूम हो जाता है। सेवा से भी हम अच्छा खुशी आनंद पाते हैं और ये सेवा से भी बहुत कभी कभी डिस्टर्ब भी होता है। लेकिन जो चलने वाला ही गिरता है, बैठने वाला बैठ जाता है। जो सेवा मैंने पूछी थी वाला बहन जी से, मैं सेवा नहीं करूंगी, बहुत प्रॉब्लम्स एग्जाम्स आ रहे, तो बहन जी ने कहा ये एग्जाम्पल, जो बैठने वाला बैठ जाता है, जो चलने वाला चलते समय कभी कभी गिर भी सकता है, लेकिन उठ के फिर जल्दी जल्दी चलना है तो ही लक्ष्य को पहुंचेंगे। सेवा मेन इम्पोर्टेंट, चार सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट, ज्ञान योग धारणा सेवा। जितना सेवा करेंगे उतना दैवी गुण 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, हम सभी अनुभवी बन जाएंगे। कभी कभी एग्जाम तो आता ही, हमारा पुराना हिसाब का किताब हमारे साथ ही है, और अभी हम जितना योग बल को ज्यादा बढ़ाएंगे उतना इस सेवा में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और दादी ने एक बार कहा था एग्जाम्पल एक कहानी के रूप में, मेन एकर स्थिति का आधार है किसी को नहीं देखना। एकर स्थिति, एक आसन पे स्थित होने के लिए खुद को देखना है, खुद को परिवर्तन करना है। किसी को देखा माना हम एक सीढ़ी उतर जाएंगे, खुद को देखा माना एक सीढ़ी चढ़ेंगे। तीन महायोगी आत्माएं आकाश मार्ग से जा रहे, एक योगी ने नीचे देखा तो उसने सांप मेंढक को खा रही। तो ये योगी ने कहा सांप मेंढक को खा रहे क्यों, ये तो पाप है। तो सेकंड योगी ने कहा ये पाप नहीं है, इस सृष्टि में भगवान ने आहार उसको ऐसा ही दिया तो इसलिए खा रहे। और सेकंड योगी भी गिर गया, फर्स्ट योगी भी गिर गया, लेकिन तीसरा योगी देखते हुए भी नहीं देखा, सुनते हुए भी नहीं देखा, नहीं सुना, समय पर लक्ष्य को पहुंच गया। ये बहुत याद होता है मुझे, दादी ने एक बार सुनाया था, प्रकाशमणि दादी ने। अभी अभी पढ़ी मैं रामकृष्ण प्रभा में, रमण महर्षि के पास एक शिष्य आया था, तो शिष्य ने कहा गुरुजी, वो शिष्य है ना दूध में पानी मिला के आपसे ज्यादा पैसा ले रहे। और एक शिष्य ने 20 किलो सब्जी लाया लेकिन आपको 30 किलो बताया, ये आप क्यों देख रहे हैं सर, देख के क्यों चुप हो रहे, आप उनको बुला के थोड़ा समझाना चाहिए। तो रमन महर्षि ने बोला वो लोग जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर रहे, आप किसके लिए यहाँ आए वो उसको देखो। हम किसके लिए आए हैं, तपस्या करने के लिए, ज्ञान योग को कमाने के लिए, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए। जो जो दुनिया में नहीं देखेगा यहाँ दिखेगा, लेकिन हम कुछ देखना नहीं कुछ सुनना नहीं, एक स्थिति का आसन है बस। और पावरफुल योग, स्वस्थिति परस्थिति, हम आत्मिक स्थिति में रहना माना स्वस्थि में, स्वस्थिति में रहना। और शरीर भान, देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, जो भी कहो, नाम मान शान, जो भी कुछ होगा तो हमको समझना चाहिए अभी मेरी स्वस्थिति नहीं है, हम परस्थिति में आ गया। परिस्थिति माना देह की स्थिति, स्वस्थिति माना आत्मिक स्थिति, परिस्थिति माना जो पुरुषार्थ के लिए जो जो चाहिए उसमें लगे होना, और परिस्थिति माना वो क्रिकेट देखना, वो सिनेमा देखना, वो सब।
लेकिन बाबा बोला माया आना बुरी बात नहीं है,
माया आना बुरी बात नहीं है, लेकिन माया को पहचान के इसको निकालना ये इम्पोर्टेंट बात है। माया तो आएगी 84 जन्मों से, जो जो किया है क्या क्या किया है वो सब अभी निकालने की समय यही है। मैं तो रोज बताती हूँ बाबा को 63 जन्मों से क्या क्या किया, क्या क्या हिसाब किताब, इतना क्या क्या पाई है, वो सभी अभी आगे आ जाओ, अभी मेरे साथ तुम हो। हाँ मैं आह्वान करती हूँ रोज, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। हाँ धर्मराज के पास जाना नहीं चाहिए, भले आठ रत्न नहीं जाएंगे, हम सभी थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है, तो भी कभी हमारे अंदर कमजोरी की बात नहीं आना चाहिए। रोज हमको ये चेक करना है जो जो क्या क्या कमजोरी है मेरे अंदर, स्थूल में क्या है, सूक्ष्म में क्या है। स्थूल से सब बहुत प्यारा पूरा नियम पालन कर ले, यहाँ रह रहे क्या कहेंगे क्या करेंगे, लेकिन यहाँ भी कोल्ड ड्रिंक्स पीना ये सब बाद में, अभी अभी दीदी जाने के बाद ये सब शुरू हो गया हुआ था। ये सब नहीं होना चाहिए, जितना हम हमारे से
देखा पहले वाला योगी देख बनना ना, नहीं होना चाहिए क्या? फिर सांप और मेंढक को देख रहे आप।
अच्छा 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 फर्स्ट योगी। अच्छा ओम शांति। मैं कभी नहीं पढ़ूंगी।
नहीं कभी मना, कभी कभी
नहीं, फर्स्ट और लास्ट
ऐसा कहते हैं। माता जी को हमने सुना तो 15 दिन में तो एक क्लास माता जी को करा नहीं
है,
हम भाषा को नहीं सुनते, हम भाव को सुनते हैं। बहुत अच्छा क्लास। तो बाबा ने कहा माया का आना बुरी बात नहीं है, परंतु माया से हार खाना कमजोरी है। कल की मूल्य में था बात आती है, उसके तीन कारण है, कौन से?
धारणाओं के
हिसाब किताब चुक्त होने के लिए आनी है, दूसरा
धारणाओं
की परीक्षा, तीसरा स्वस्थिति की चेकिंग। तो बातें तो आएगी, उसको कल गुड़ियों के साथ बाबा ने तुलना की उसकी। तो बातों का कारण आने का कारण है, माया का आने का कारण है, भिन्न भिन्न रूप से आती है। सबसे पहला कारण हिसाब किताब, दूसरा कारण अपनी जो धारणाएं हैं उनकी परीक्षा। ये पता कैसे चले कि हम इस धारणा में पक्का है या नहीं है, तो धारणाओं की परीक्षा के लिए। और तीसरा स्थिति, हमारी कितनी शक्तिशाली, हम कितने पानी में है, ये देखने के लिए भी बातें, माया, परिस्थिति, विघ्न, समस्या सब आएंगे। तो ये आना खराब बात नहीं है, परंतु उससे हार खाना ये कमजोरी है। तो बाबा ने कहा तपस्या, तपस्या शब्द का अर्थ होता है तप से निकला हुआ शब्द है तपस्या, तप अर्थात प्रकाश। तो तपस्या, हमारी तपस्या और हठ योगियों की तपस्या, वो लोग आसन पर बैठते हैं, आसन जयी बनते हैं। एक ही आसन पर जब कोई 3 घंटा बैठ जाता है तो उसे आसन जयी कहा जाता है। यहां तुम किस आसन पर बैठते हो, मन बुद्धि को स्थिति के आसन पर स्थित करते हो। कई प्रकार की बाबा कई प्रकार के आसन बताए, स्थितियां बताई है, जैसे कि माता जी ने कहा फरिश्ता स्थिति, एकरस स्थिति, कर्मातीत स्थिति, बीज रूप स्थिति, साक्षी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, अलग 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 स्थितियों का गायन है, कर्मातीत स्थिति। तो ये सब स्थितियों का अर्थ क्या है, मन और बुद्धि को स्थिति के आसन पर बिठाना। तो हमारी तपस्या ये तपस्या है, वो लोग एक टांग पर खड़े होते हैं और हम यहाँ एकरस स्थिति में रहते हैं। यहाँ की कॉपी उन्होंने की है। तो यहां आने का, जैसे माता जी ने कहा, हमारा जो लक्ष्य है वो है तपस्या। तपस्या अर्थात आज की मुरली में भी एक जगह है वरदान में, बार बार अटेंशन देना ही तपस्या है। बार बार स्वयं पर अटेंशन, वातावरण को शक्तिशाली बनाना ही तपस्या है। ऐसी हम तपस्या करें कि कोई हमारे सामने आ जाए तो उसका व्यर्थ और व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाए। ये हमारी तपस्या का लक्ष्य है। भगवद गीता में तपस्या के कई प्रकार गिनाए हैं, सात्विक तपस्या, राजसी तपस्या, तामसी तपस्या। सात्विक तपस्या अर्थात जो किसी स्वार्थ की भावना से नहीं की गई, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, परोपकार के लिए की जाती है, विश्व कल्याण के लिए की जाती है, वह है सात्विक तपस्या। तो हम सबकी कौन सी तपस्या है? सात्विक तपस्या। दूसरी है राजसिक तपस्या। राजसिक तपस्या होती है वो क्या होती है? उसमें स्वार्थ होता है, उसमें कोई इच्छाएं होती है। जैसे आज बाबा ने कहा तो भूत विद्या जो है वो तामसी में जाता है ज्यादा, पर इसमें भी आ सकता है। तो एक होती है राजसिक तपस्या, मतलब जिसमें कुछ जैसे पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति, इस तरह ऐहिक सुखों की प्राप्ति, ये सब राजसिक तपस्या में होती है। उसके बाद है तामसिक तपस्या। तामसिक तपस्या अर्थात जिसमें स्वयं के देह को कष्ट देना उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए जिससे हम दूसरों को कष्ट दे सके, वो सबसे निकृष्ट तपस्या है। उसमें ये भूत विद्या, जो आज बाबा ने कहा बाप तुमको कौन सी पढ़ाई नहीं पढ़ाते, भूत विद्या तुमको नहीं पढ़ाई जाती है। थॉट रीडिंग, क्योंकि थॉट रीड करके तुम उसको कुछ कष्ट दो, ये सब तुमको नहीं सिखाया जा सकता। तो वो जो है वो तपस्या है तामसिक। और भी तपस्या होती है, मानसिक तपस्या, कायिक शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, वाचिक तपस्या। एक होता है शरीर को कष्ट देना या शरीर के द्वारा जो तपस्या की जाती है, जो हठयोगी करते हैं। एक है मानसिक तपस्या, मतलब जिसमें मन को सौम्य बनाया जाता है, शिथिल बनाया जाता है, शांत बनाया जाता है, इस तरह की मानसिक तपस्या। एक होता है वाचिक तपस्या, जिसमें वाचा जो है वाचा शुद्धि, उद्वेग्न उद्वेग से रहित वाचा, प्रिय भाषण, ये सब वाचा की तपस्या है। तो हमें बाबा जो तपस्या सिखा रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। उसमें कहीं एक पाव पर खड़ा नहीं रहना है, जटाजूट धारण नहीं करना है, दाढ़ी नहीं बढ़ानी है, उसमें वो नख वृद्धि करते हैं वो नहीं करनी है, राख शरीर को लगाते हैं, देह को कष्ट देते हैं, बर्फ में बैठते हैं, बर्फ मारी में रहते हैं। जैन लोग अलग अलग धर्मों की अलग अलग तपस्या है, जैनों की अलग तपस्या, बौद्ध में अलग तपस्या, क्रिश्चियनिटी में अलग तपस्या, हर धर्म में अलग 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 तपस्या है। परंतु हमारी जो तपस्या है वो कौन सी है? कल बाबा ने कहा कर्म रेखा, ये तुम्हारा भाग्य है। कौन सी कर्म रेखा? कर्म रेखा अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी, ये हमारी तपस्या है। तो हमारी तपस्या संसार में सबसे पहले तो सतो प्रधान तपस्या है, सात्विक तपस्या है, सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, मानसिक तपस्या है, वाचिक तपस्या है, और इस तपस्या का लक्ष्य है सारे विश्व का कल्याण करना, वातावरण को शक्तिशाली बनाना। कोई भी आपके सामने आ जाए, कल की मुरली में कहा था ना, तो क्या अनुभव उसको, जैसे अखूट खजानों की खान के सामने आ गए, मैं वहां पहुंच गया जहां पर सर्व प्राप्तियां होती है, ऐसी ऐसा उनको अनुभव हो कि मैं यहां आ गया। स्वयं को इस स्मृति में रखो कि मैं अवतरित आत्मा हूं इस देह में, किस लिए अवतार लिया है? विश्व कल्याण के लिए। तो वैसे ही बोल निकलेंगे, वैसे ही कर्म करेंगे, वैसे ही संकल्प निकलेंगे, वैसे ही जहां नजर पड़ेगी तो कल्याण ही होगा, और ये स्मृति ही लाइट हाउस का काम करेगी। वो लाइट हाउस से तो एक रंग की किरणें निकलती है, तुमसे विभिन्न शक्तियों की किरणें निकलेगी, और जो भी संपर्क में आएगा, जो भी इसके अंदर आएगा, उसको इस तरह अनुभव होंगे। हाँ, जैसे वो दिखाते हैं, इशारा करते हैं उंगली का, तो तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारा हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे। जब ये होगा तो अभी जो भिन्न भिन्न गीत गाते हैं वो फिर एक ही गीत गाएंगे, तुम्हारे गीत गाएंगे, बाप के गीत गाएंगे, एक ही साज होगा उनका, और तुम उनको साक्षात्कार कराओगे, ये भी कहा ना, तुम उनको वरदान दोगे, वो हाय हाय करेंगे और तुम उनको वरदान दोगे। तो ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाना है, केवल भाषण नहीं, वातावरण को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि आजकल दुनिया के लोग इसके ज्यादा इच्छुक है, वातावरण से प्राप्ति की ज्यादा इच्छुक है, केवल भाषण नहीं सुनना चाहते आप। जैसे सूर्य की किरणों के माफिक उनको अनुभव होगा कि ये किरणें कहां से आ रही है, जैसे किसी प्यासे की पानी से प्यास बुझ जाती है तो उनकी सुख शांति की प्यास यहां बुझ जाए। जैसे यज्ञ के शुरुआत में एक ही दिन कोई आता था तो उसको अनुभव हो जाता था, वैसे यहां कोई आ जाए तो उसको अनुभव हो जाए। तो अनुभव कराने की सेवा, वातावरण को शक्तिशाली बनाने की सेवा, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसी तपस्या हम करें, एक रस स्थिति जिसमें हो हमारी, एक बाप दूसरा न कोई, तीसरा दूसरा नहीं, बस एक की लगन में मगन, एक की हमारा लक्ष्य हो, ऐसी हमारी एक रस स्थिति ही, मतलब जो उन्होंने कॉपी कर लिया एक टांग पर खड़ा होना। और ये जो तपस्या का मार्ग है, ये कोई कंटक पूर्ण मार्ग है, ऐसा नहीं कि इसमें निष्कंटक मार्ग है, बहुत परिस्थिति माया समस्याएं सब आएगा, पर ये सब सबको क्रॉस करते हुए हमें विजयी बनना है। तो हमारी तपस्या का ये लक्ष्य है स्वयं को शक्तिशाली बनाना और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना। तो आज बाबा ने तपस्या के ऊपर कहा। कभी बाबा ने ब्रह्मा कुमार को कुमारों से बात करते हुए कहा था वो क्या दिखने चाहिए, तपस्वी कुमार दिखना चाहिए। केवल ब्रह्मा कुमार अर्थात तपस्वी कुमार, तपस्या में मगन, जैसे वो लोग घोर तपस्या करते हैं ना, 12-12 साल तक तपस्या करते एक ही आसन में स्थित रहकर, तो तुम्हें भी वैसी घनघोर तपस्या करनी है। तपस्या करते तो ऊपर सिंहासन डोलने लगते हैं, ऐसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, तो हम भी ऐसी तपस्या करें। हाँ, फूल भी बरसते हैं वैसे दिखाते, कोई तपस्या में बैठा तो वो रेती का या पूरी मिट्टी घास होने लगती है उसके ऊपर, हाँ दीमक भी लग जाती है, तो ये सब हो जाता है। ऐसी तपस्या करते हो सब कहीं जाके वो देवता या कोई मतलब हिलने लगता है और भगवान तब प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ तो भगवान प्रसन्न है पहले से तो हमारी तपस्या उनसे बहुत श्रेष्ठ तपस्या है। तो माता जी ने बहुत बढ़िया सुनाया, तो हर 15 दिन में मुझे लगता है माता जी को मेडिटेशन हॉल में एक हिंदी में क्लास रखना है, यहाँ सुनना अलाउड ही नहीं है। नहीं, हमें हिंदी में चाहिए, हिंदी 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 में चाहिए, हिंदी में अच्छा करते हो। हाँ चलो वैसे करो, तेलुगु में कराना फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो कल अरविंद भाई का है और उसके बाद एक यहाँ मुरली खत्म होती है, दादी जानकी से मुलाकातें कर गया है तो वो नागेश का भी ले सकते हैं। तो उसमें छोटा सा पैराग्राफ है दादी जानकी से मुलाकात, राजू भाई ने एक संकलन किया हुआ है, बाबा ने दादी जान के लिए क्या क्या कहा है, छोटा सा एक है तो उसको आप पढ़ सकते हो, मतलब बाबा ने दादी जी के लिए क्या क्या कहा है और दादी जी की क्लासेस से कुछ बातें ले सकते हो ना, दादी जी ने क्या क्या कहा है या उनके जीवन के कुछ अनुभव, वो दादी जी का हिस्ट्री का अनुभव है, दादी जी का मतलब जीवन कहानी एक क्लास है, वो भी आप सुन सकते हो। वो तो है वो किताब, वो तो दादी ने मुझे खुद दी थी बहुत मुझे 1 साल पहले दी थी, वो छोटी सी किताब है जिसमें अव्यक्त बाप दादा ने दादी को क्या क्या कहा अब तक, वो सारी छोटा सा संकलन सारे 69 से लेकर तो 2012 तक शायद, हाँ उसमें भी अनुभव है। तो दादी जानकी से संबंधित उनके जीवन का अनुभव, उन्होंने क्या क्या कहा, उनके लिए भगवान ने क्या क्या कहा, वो सब बातें। जैसे एक बार मुझे याद है दादी के लिए एक बार विदेश में कोई बड़ा प्रोग्राम था तो वहां पर बोर्ड बनाया था कि दादी जानकी लव्स गॉड, ऐसा कि भाई ये दादी जानकी जो है वो भगवान से प्यार करती है, और ऐसा बोर्ड था प्रोग्राम था। तो शायद सूरज भाई या जगदीश भाई ने कहा था इसको थोड़ा उल्टा लिखा होता तो गॉड लव्स दादी जानकी, शायद ऐसा लिखना चाहिए था। तो कल अरविंद भाई का क्या टॉपिक है मुझे याद नहीं, तो जो भी है हाँ तो वो टॉपिक आप थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करके मनन करके, जैसे माता जी ने श्रेष्ठ चिंतन किया आज, पावरफुल चिंतन। मैं ऐसी वो कहानी तो मुझे पता ही नहीं थी, पहली बार सुनी वो मेंढक और
मेंढक सांप वाली,
मुझे पता ही नहीं थी, नई बात थी मेरे लिए। तो दूसरी कहानी भी जो आपने बताई रमन महर्षि की, मुझे तो ब्रांड न्यू कहानियां सुनाई आपने आप महान आत्मा है ना, महान आत्मा अपने आप को प्रत्यक्ष करना नहीं चाहती, वो गुप्त रहना चाहती तो इसके लिए आप ऐसा कह रहे हो, दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हो, खुद पीछे रहना चाहते
हो।
आपने सुन लिया बहुत, अभी सुनाने का समय आ गया आपका।
3 साल से सुनते
इंग्लिश में साथ हमारा जारी।